नमस्कार, बोधि वार्ता में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार हमने देखा कि सभी अनुभव इंद्रिय जनित अनुभूति मात्र हैं। इंद्रियों से जो भी हमें पता चलता है वो अनुभव है। इंद्रियां चित्त का वो भाग है जो परिवर्तन को दर्शाता है, जिसकी वजह से परिवर्तन का अनुभव संभव है। इंद्रियां परिवर्तन से प्रतिक्रिया करती हैं और एक अनुभूति को जन्म देती है। सारे अनुभव अनुभूतियों से बने हैं। ये प्रक्रिया चित्त में चल रही है, जिसे हम अनुभूति की प्रक्रिया कहते हैं या संवेदन की प्रक्रिया कहते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि वो क्या है जो बदल रहा है। और हमने देखा कि क्योंकि अस्तित्व एक ही है, अनुभव और अस्तित्व भी एक ही होगा, इसलिए जो बदल रहा है वो अस्तित्व है, उसी का हमें अनुभव हो रहा है। और क्योंकि अनुभवकर्ता भी अस्तित्व ही है, यदि अनुभवकर्ता मैं हूँ तो मैं ही हूँ जो बदल रहा हूँ, और मुझे मेरे ही दर्शन परिवर्तन के रूप में हो रहे हैं, जिसको मैं अनुभव कहता हूँ। या आम भाषा में कहें तो मुझे मेरा स्वयं का ही अनुभव हो रहा है, कुछ दूसरा नहीं है वहाँ जो बदलता है। तो ये थे मूलभूत बातें अनुभव के बारे में। और पहला अनुभव हमने देखा जगत का है, दूसरा शरीर का है, तीसरा मन का है। तो आज हम जगत के अनुभव में और गहरे उतरेंगे, क्योंकि अनुभव परिवर्तन है। जगत का अनुभव भी एक तरह का परिवर्तन है। जैसा कि हमने शुरू में देखा कि सारे अनुभव परिवर्तनशील हैं। यदि परिवर्तन नहीं तो अनुभव भी नहीं होता। कुछ अनुभव होने के लिए आवश्यक है कि कुछ परिवर्तन हो, जिससे कि इंद्रियां प्रतिक्रिया करें और उसकी अनुभूति पैदा करें और उसका अनुभव हमें मिले। क्योंकि सारा अनुभव इंद्रियों द्वारा जनित अनुभूति मात्र है, चाहे कैसी भी इंद्रियां हों। जगत का अनुभव जो शरीर के बाहरी सतह पर इंद्रियां हैं उनके द्वारा जनित अनुभव है। इंद्रियों के बारे में हम विस्तार में चर्चा करेंगे जब हम शरीर के अनुभव के बारे में चर्चा करेंगे। अभी इतना ही समझ लेते हैं कि इंद्रियां वो भाग है चित्त का जो किसी परिवर्तन से प्रतिक्रिया करता है और एक अनुभूति को जन्म देता है। जो बदलता है उसको वो अस्तित्व है, क्योंकि चित्त के कई भाग कर देता है, उसको हजारों तरह के अनुभवों में बांट देता है। इसलिए समझने के लिए हम एक अवधारणा बना सकते हैं कि जो बदल रहा है वो एक तरह का परिवर्तन है, जिसको कि हम पराभौतिक और परामानसिक रचनाएं कह सकते हैं। ये रचनाएं बदल रही हैं, परिवर्तन हो रहा है, और चित्त जो है इंद्रियों के माध्यम से इस परिवर्तन की अनुभूति कर रहा है। यही अनुभव है। तो इससे समझना आसान हो जाता है कि यदि मैं ही अस्तित्व हूँ तो मुझे मेरा ही अनुभव कैसे हो रहा है। इसके लिए हम एक अवधारणा बना लेते हैं कि ये कुछ रचनाओं के माध्यम से हो रहा है, जो कि बदलती रहती हैं, जो कि परिवर्तनशील हैं, और इनको हमने नाम दिया था पराभौतिक परामानसिक रचनाएं। काफ़ी बड़ा नाम है और शायद ही आपने सुना होगा कहीं। ये रचनाएं काल्पनिक रचनाएं हैं, इनको देखा नहीं जा सकता, लेकिन अनुभव किया जा सकता है एक अनुभव अनुभूति के रूप में। इसीलिए मैंने उनको पराभौतिक कहा है, क्योंकि जो भौतिक जगत का अनुभव या अनुभूति हमें होती है वो इन रचनाओं के कारण होती है, इसलिए वो भौतिक के परे हैं, इसलिए पराभौतिक। और ऐसे ही मानसिक, वो अनुभूतियाँ परामानसिक रचनाओं के माध्यम से होती है। जिसका भी हमें अनुभव हो रहा है अनुभूति के रूप में, उसको हम कह सकते हैं कि वो एक तरह की पराभौतिक और परामानसिक रचना है, जिसका हमें अनुभव हो रहा है। ये एक काल्पनिक बात है, ये एक सिर्फ समझने के लिए है। आप ढूंढने जाएंगे ऐसी रचनाएं तो आपको नहीं मिलेंगी, आपको सिर्फ अनुभूतियां ही मिलेंगी। इस कल्पना की वजह से मुझे बार बार नहीं कहना पड़ेगा कि आपको अपना ही अनुभव हो रहा है या अस्तित्व का ही अनुभव हो रहा है, जिससे कुछ अर्थ निकलता नहीं है खास। तो समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि हमें एक परिवर्तनशील रचनाओं का अनुभव हो रहा है, जो कि अनुभूति के रूप में है। सारे अनुभव अनुभूतियाँ ही है। यदि आप अपने अनुभवों को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें एक तरह की नियमबद्धता है, नियमों से बंधे हैं, वो अनुभव बिखरे हुए नहीं है। एक अनुभव के बाद जो दूसरा अनुभव होता है वो उसका कोई तर्क होता है, वो अव्यवस्थित नहीं होता, उसका एक क्रम होता है, क्रम रहित नहीं होता। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यदि आपका अनुभव बिना किसी क्रम के, बिना किसी नियम के बदले, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। वो अनुभव में, वो अनुभूति अनुभव में नहीं बदलेगी, क्योंकि चित्त उसका कोई अर्थ नहीं निकाल पाएगा। जो चित्त का जो भाग है बुद्धि, उसमें वो अंकित नहीं होगा वो अनुभव। मान लीजिए आप अपने घर में बैठे हैं और आपकी कुर्सी अचानक टेबल में बदल जाती है, टेबल अचानक फ्रिज में बदल जाता है, फ्रिज अचानक कार में बदल जाता है, और कार पुस्तकों के ढेर में बदल जाती है, और वो सारे पक्षी बन के उड़ जाते हैं। ये जो अनुभव है, जो कि आपने स्वप्न में थोड़ा बहुत इस बात का अनुभव किया होगा कि वहाँ कोई नियम ज़्यादा होते नहीं है, कोई क्रम होता नहीं है, बिना किसी क्रम के अनुभव बदलते रहते हैं, इसलिए याद भी नहीं रहते और उनका कोई अर्थ भी नहीं निकलता। तो यदि ऐसा होने लगे जगत में, तो ये एक अर्थहीन सा अनुभव हो जाएगा, इसका बुद्धि के लिए कोई उपयोग नहीं रहेगा इस अनुभव का, और चित्त में ये अंकित भी नहीं होगा, आपकी स्मृति में भी नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ अर्थ नहीं निकलता इसका। तो क्योंकि ऐसा नहीं होता, आपके अनुभव जो है कम से कम जागृत अवस्था में एक क्रम से बदल रहे हैं, नियमित तरीके से बदल रहे हैं, और उसका अनुमान लगाया जा सकता है, एक भविष्य में देख सकते हैं कि ये जो परिवर्तन हो रहे हैं आगे कैसा परिवर्तन होगा। क्योंकि हमारी बुद्धि जो है वो यही काम करती है कि वो देखती है कि परिवर्तन किस तरह से हो रहा है, और उसको स्मृति में अंकित करती है, उसकी छाप पड़ती है स्मृति में। इसको हम कारण भी कहते हैं कि यदि एक अनुभव दूसरे अनुभव में बदलता है तो उसका एक कारण होता है जो कि पिछला अनुभव होता है। तो यदि आप बारिश का अनुभव कर रहे हैं तो उसके पहले एक अनुभव होगा जो कि बादलों का अनुभव होगा, गरजने का और बिजली कड़कने का, जिसके बाद बारिश का अनुभव होगा। तो बुद्धि का काम यह है कि दोनों में एक संबंध बनाना और उसको स्मृति में डालना। तो ये जो एक क्रम बनता है अनुभवों का, इसको हम एक नियम भी कहते हैं। नियमित रूप से अनुभव बदलते हैं, खास तौर से जगत के अनुभव, जागृत अवस्था के अनुभव। जागृत अवस्था की यही खासियत है कि यहाँ पर जो अनुभव होता है वो काफ़ी स्थायी होता है, थोड़ा बहुत स्थायी होता है, अर्धस्थायी, और थोड़ा बहुत नियमित भी होता है, उसमें नियम के अनुसार बदलता है। इसीलिए हम उसको वास्तविक अनुभव कहते हैं, जगत का जो अनुभव है, क्योंकि यह वास्तविक लगता है, यह सत्य लगता है, क्योंकि नियमबद्ध है, नियमित है, अर्धस्थायी है, और बुद्धि के अंदर है। हमें उसकी उसका अनुमान लगाने में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि सारा जीवन हम वो अनुभव करते रहते हैं, ठीक उसी के अनुसार आने वाले अनुभव होते हैं। ये हमें तार्किक रूप से सही लगता है, इसीलिए हम उसको यथार्थ कह देते हैं, इसीलिए हम उसको वास्तविक अनुभव कहते हैं। और जो स्वप्न में होता है हम उसको अवास्तविक कहते हैं, क्योंकि वो किसी बेढंगे तरीके से बदल रहा होता है, उसमें कोई क्रम नहीं होता, कोई नियम नहीं होता। इसी तरह मन के अनुभव हैं, उनमें नियम ढूंढना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन वो भी किसी न किसी नियम में बद्ध हैं, बस उनको ध्यान से देखने की आवश्यकता है कि क्या नियम है। जगत के अनुभव, उनके नियम ढूंढना बहुत आसान काम है, इसी को हम विज्ञान कहते हैं। इनके बारे में जानना, जगत के नियमों के बारे में, एक तरह का ज्ञान है, और हम इसको विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान ज्ञान मार्ग की एक शाखा है, जिसमें हम जगत के अनुभव का अध्ययन करते हैं, जो नियमबद्ध तरीके से बदल रहे हैं। है तो वो परिवर्तनशील है, तो वो माया, लेकिन एक विशेष तरह की माया है जो कि किसी क्रम से चलती है और बदलती है। मैंने जो बदलता है मैंने उसका नाम रखा है पराभौतिक परामानसिक रचनाएं, जो कि चित्त का ही एक और स्वरूप है, और जो कि अस्तित्व का ही एक भाग है, जिसके दर्शन अस्तित्व को स्वयं हो रहे हैं अनुभवकर्ता के रूप में। ये बार बार मूल तत्व पे आना आवश्यक है, ताकि आप भूल ना जाएं कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो अस्तित्व के बारे में है, वो अनुभव और अनुभवकर्ता के बारे में है। ये जो है कई रूपों में दिखाई देता है, उसमें से एक रूप जगत है। जगत का अध्ययन आसान है, क्योंकि नियमबद्ध है। यदि एक पराभौतिक और परामानसिक रचना किसी नियम से बदलती है, उसके पीछे कोई नियम होता है, तो हम उसको एक विशेष नाम दे सकते हैं। कुछ रचनाएं जो हैं वो बिना किसी नियम के बदलती हैं, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया, स्वप्न में या मन में, या ऐसा लगता है कि उसमें कोई नियम नहीं होगा। यदि कोई रचना किसी नियम से बदलती है, किसी क्रम से बदलती है, तो हम उसको एक विशेष नाम दे सकते हैं। वो नाम है नाद रचना। अब ये नाद रचना क्यों है? क्योंकि जो सबसे सरल रचना है वो एक नाद की तरह है, वो परिवर्तन एक नाद की तरह है। ऐसी कौन सी रचना होगी जो कि सबसे सरल तरीके से बदलती है? ऐसा कौन सा परिवर्तन है जो सबसे सरल है, सबसे मूलभूत है? तो बहुत आसान है देखना कि एक परिवर्तन जो दो स्थितियों में बदलता है वो सबसे मूलभूत है। सबसे सरल परिवर्तन जो है वो दो स्थितियों में, दो तरीकों में बदलता है। सबसे सरल परिवर्तन क्या होगा, सबसे सरल रचना क्या होगी? वो जो केवल दो स्थितियों में रहता है, केवल दो स्थितियों में पाया जाता है। यदि वो परिवर्तन एक ही स्थिति में है, एक ही अवस्था में है हमेशा, तो वो परिवर्तन नहीं है, वो तो स्थाई है, उसमें कुछ बदल नहीं रहा। कम से कम दो स्थितियां चाहिए रहेंगी, दो अवस्थाएं चाहिए रहेंगी, तभी हम उसको परिवर्तन कह सकते हैं। तो ऊपर नीचे, या शून्य और एक, या हाँ या नहीं, या ठंडा या गर्म, ऐसा कोई भी आप परिवर्तन ले लें जो कि दो स्थितियों में होता है, वो एक उदाहरण होगा सबसे सरल परिवर्तन का। इसमें नियम ढूंढना बहुत आसान है। इसका नियम है कि जब भी उस रचना की स्थिति ऊपर होगी, तो अगली बार जब परिवर्तित होगा वो जब परिवर्तित होगी वो रचना, तो उसकी स्थिति नीचे हो जाएगी। वो यदि नीचे है तो उसकी स्थिति ऊपर हो जाएगी। ये जो है एक दोहरी रचना है, केवल दो स्थितियों में, दो अवस्थाओं में पाई जाती है। तो इसका नियम बहुत आसान है ढूंढना। जब वो एक स्थिति में है तो नियम कहता है कि बदलने के बाद दूसरी स्थिति में आएगी, और यदि दूसरी स्थिति में है तो नियम कहता है कि बदलने के बाद पहली स्थिति में आएगी। ये सबसे सरल रचना है। यदि ये रचना बार बार दोहराने लगे, यदि इसकी आवृत्ति होने लगे, तो ये एक नाद बन जाता है। इसीलिए हम इस रचना को नाद रचना कहते हैं। नाद रचना वो परिवर्तन है जो एक नियम से बना है और नियम के द्वारा बदलता है। कुछ रचनाएं हैं जो नियम से नहीं बदलेंगी। अनुभव में हर तरह की संभावना है, हर तरीके के परिवर्तन की संभावना है, लेकिन यदि वो बिना किसी नियम के, बिना किसी क्रम के बदलता है, तो बुद्धि के बाहर चला जाता है। जैसे कि हमने उदाहरण देखा, ऐसा अनुभव जो किसी नियम से नहीं बदल रहा है, जिसे किसी क्रम से नहीं बदल रहा, वो बुद्धि के परे हो जाता है। बुद्धि उसका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ नियम उसमें से ढूंढ नहीं सकती बुद्धि। इसीलिए वो अपने आपके स्मृति में भी अंकित नहीं होगा। बचता क्या है? बचता है ऐसा परिवर्तन जो एक नियम से बदल रहा है, एक क्रम से बदल रहा है, उसी परिवर्तन को हम नाद रचना कहते हैं। नाद क्यों? क्योंकि सबसे सरल है। जो परिवर्तन इस तरह का होगा, जो नियम से बदल रहा होगा, वो एक तरह का नाद होगा। ऊपर नीचे इस तरह का नाद होगा वो, या ज़्यादा कम, या अस्तित्व और अस्तित्व का अभाव, ये भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ केवल अस्तित्व है और वो बदलता है, तो वो अस्तित्व के अभाव के रूप में दिखाई देगा, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए जो परिवर्तन है हम उसको काल्पनिक परिवर्तन कहते हैं, या आभासिक परिवर्तन कहते हैं, या फिर ऐसा परिवर्तन जिसकी केवल संभावना भर है, होता नहीं है। तो इसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। अभी तो आप इतना जान लें कि जो परामानसिक या पराभौतिक रचना है, बुद्धि के अंदर है, बुद्धि के वश में है, वो हमेशा नियमबद्ध होगी। सबसे सरल नियम खुद को दोहराना है दो दो अवस्थाओं में, उसी को हम नाद रचना कहते हैं। सबसे सरल नाद रचना एक नाद की तरह होती है। यदि हम एक सरल नाद रचना को स्वयं उसी नाद रचना से जोड़ें, तो हमें एक यौगिक नाद रचना मिलती है, एक जटिल नाद रचना मिलती है, जो थोड़े और जटिल रूप से बदल रही है। यदि हम ऐसे इसमें नाद रचनाएं मिलाते जाएं तो देखेंगे कि बहुत ही जटिल यौगिक रचना बन जाती है। और यही हमारा अनुभव है, हमें जो वस्तुओं के अनुभव होते हैं, जगत के अनुभव जगत में, वो एक तरह की रचना है, एक तरह की काफ़ी जटिल रचना है। और उसके पीछे ये यौगिक नाद रचनाएं हैं। सरल नाद रचनाओं से मिलकर जटिल नाद रचना बनती है, जिसको कि हम वस्तु के रूप में अनुभव करते हैं। वस्तुओं की यही वास्तविकता है। अनुभव इंद्रियों के माध्यम से होते हैं और इंद्रियां भी वस्तु है और इंद्रियां भी नाद रचनाओं से ही बनी हैं। एक जटिल रचना है इंद्री, और कोई भी इंद्री ले लें आप, और यदि एक नाद रचना इंद्रियों से प्रतिक्रिया करती है तो एक अनुभव उत्पन्न होता है, एक अनुभूति उसकी बनती है। यदि कोई इंद्री किसी भी दूसरी रचनाओं से प्रतिक्रिया ना करे तो वो उसका कुछ अनुभव हमें नहीं होता, भले ही वहाँ रचनाएं हो या ना हो, उसका कोई अनुभव नहीं होगा। इंद्रियों से प्रतिक्रिया आवश्यक है, क्योंकि नाद रचनाएं परिवर्तन मात्र है, नियमबद्ध परिवर्तन है। जब वो परिवर्तन इंद्रियों तक पहुँचता है तो इंद्रियाँ उस पर परिवर्तन के अनुकूल प्रतिक्रिया करती हैं, जिसका हमें अनुभूति के रूप में अनुभव होता है। ये अनुभूति जब बुद्धि में पहुँचती है, जब ज्ञान का रूप लेती है, तो वस्तु का निर्माण होता है। और हमारी अवधारणा है कि सारी वस्तुएं जो है पदार्थ की बनी है, लेकिन वहाँ कोई पदार्थ नहीं है, जगत किसी पदार्थ का नहीं बना है, ये केवल अवधारणा मात्र है। जगत जो है नाद रचनाओं का बना है, नाद रचनाएं शुद्ध परिवर्तन है, किसी पदार्थ में परिवर्तन नहीं हो रहा है, अस्तित्व स्वयं परिवर्तित हो रहा है, जो कि शून्यता है। अब आप पूछ सकते हैं कि शून्यता में कैसे परिवर्तन आ सकता है, तो जैसा कि मैंने कहा कि ये परिवर्तन आभासी है, इसकी केवल संभावना है, ये वास्तविक परिवर्तन नहीं है, अवास्तविक परिवर्तन है, ऐसा कोई परिवर्तन कहीं हो नहीं रहा है, आभास मात्र है, इसीलिए उसे माया कहा गया है। तो क्योंकि चित्त गढ़ता है अनुभूतियाँ, वो माया है, क्योंकि बदल रही है सारे की सारी अनुभूतियाँ, सारे के सारे अनुभव, वो जा चुका है अनुभव जो आप स्मृति मात्र है, इसीलिए दोहरी माया है। और क्योंकि परिवर्तन कभी हुआ ही नहीं, परिवर्तन का केवल आभास है, नाद रचनाओं के स्तर पर भी केवल आभास मात्र है परिवर्तन का, इसलिए तिहरी माया है। तो माया काफ़ी गहन है, सिर्फ वो नहीं है जो चित्त बनाता है, ये माया जो है अस्तित्व का ही रूप है, अस्तित्व में बहुत गहरे जाती है माया। तो जो परिवर्तन का आभास है वहाँ से माया शुरू होती है, और क्योंकि परिवर्तित हो रही है वो नहीं है, क्योंकि चित्त निर्मित है बिल्कुल नहीं है, तो सारे अनुभव माया है, सारी वस्तुएं माया है। और क्योंकि जगत वस्तुओं का एक संग्रह है, सारा जगत माया है, वो नहीं है वहाँ, क्योंकि जो इंद्रियां हमें बताती है वो चित्त निर्मित है, इंद्रियां चित्त का भाग है, और इंद्रियां जो है नाद रचनाओं से प्रतिक्रिया करके ही बता पाती है क्या है वहाँ, नाद रचना है शुद्ध परिवर्तन है, इसलिए वो और माया है, दोहरी माया। और क्योंकि नाद रचनाएँ का केवल आभास मात्र है, केवल संभवित रचनाएँ हैं, उनकी केवल संभावना मात्र है, वास्तविक रूप से कभी कुछ बदलता नहीं है अस्तित्व में, तो एक तिहरी माया है। तो इसको समझना अब आसान हो जाता है, क्योंकि हम अनुभव के काफ़ी गहराई में उतर चुके हैं। तो सिर्फ कह देना कि सारा जगत माया है, इससे कुछ समझ में नहीं आता। काफ़ी लोग इसको बस अंधविश्वास के रूप में मान लेते हैं, अंधविश्वास कर लेते हैं बिना समझे। इसको समझने के लिए कि जगत माया क्यों है, आपको अनुभव के गहराई में उतरना पड़ेगा, जैसे कि हमने अभी किया।
आप सुन रहे थे बोधि वार्ता तरुण प्रधान के साथ। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस श्रृंखला के अगले भाग में। नमस्कार।